जब गोपियां इकट्ठी होती है तो प्रेम की चर्चा करती है। माँ जब गोपियां इकट्ठी होती है तो प्रेम की चर्चा करती है। उनकी ऐसी इच्छा होती है कि हमारे शरीर का चूर्ण बना करके, जैसे चंदन का चूरा होता है, चंदन जो है उसे को जब आरस से काटते हैं तो एक प्रकार से जो झड़ता है वो चूरा अपने आटे के समान खूब महीन होता है, चंदन का जो चूरा है। तो वे चाहते हैं कि हमारे शरीर का चूरा बना लिया जावे और उसके ऊपर भगवान लेते हैं, तो इस प्रकार से हम इसे मुग्ध हो जावे। जब शरीर का चूरा बन जाता है तो उस चूरे में तो जान नहीं रहती, वहां फिर मुग्ध कौन हुए, किंतु उनका भाव है। उनका ये भाव है कि उस चूरे के बीच में जो हमारी ज्ञान कायम है, आपको मालूम है एक छोटी सी कहानी है, वो लोकोक्ति है, कहीं ग्रंथ की भी है तुमको मालूम नहीं। एक समय की बात है, नारद जी जो है भगवान के परम धाम के मां गए, परम धाम का मतलब यहां द्वारकापुरी, भगवान उस वक्त में द्वारकापुरी में बात करते थे। जाकर के नारद ने पूछा, प्रभु सबसे बढ़कर आपको प्रिय कौन है और सबसे बढ़कर प्रेमी आपका कौन है, आपकी भी प्रीति सबसे बढ़कर किस में है, आपको सबसे बढ़कर कौन प्रिय लगता है और सबसे बढ़कर किसकी भक्ति है। उन्होंने कहा गोपी, तो आज आप ऐसे तिलन पर सूते क्यों हैं, कि बोले हमारे अंगुली के थोड़ी चोट लगी है, तो ये जो घाव हो गया इसकी पूर्ति जल्दी किसे हुए, कि भक्त का जो खून है उसमें कपड़ा भी घुस करे यदि इसके लपेट दिया जाए तो जल्दी आराम। जो प्रेमी भक्त है उसे के खून में पट्टी अपने झोकर के इसके लपेटी जावे तो जल्दी आराम। अच्छा महाराज, इसके लिए मैं चेष्टा करूं, अरे जरूर करनी थी। जो संसार में भक्त कहलाते थे उनके पास नारद जी गए, मतलब भगवान के चोट लग गई और भक्त के खून की बड़ी आवश्यकता है, तो आप कुछ दे सकते हो, आपके खून में पट्टी भिजो करके भगवान की अंगुली के लगावे। उन्होंने कहा कि नारद बात तो ठीक है, किंतु हम ऐसे भक्त नहीं हैं जिससे हमारे खून की पट्टी से भगवान की आराम हो जावे, हम तो साधारण मामूली आदमी। नारद जी जहां गए किसी ने कछु कहा, किसी ने कछु कहा, किंतु नारद जी को कहीं भी भक्त के खून की तस्वीर नहीं लगी। तब उस नारद को याद आई कि भगवान जो कहते थे कि गोपियां सबसे बढ़कर मेरी भक्त है, तो चलो एक प्रकार से ब्रज में चले। तो नारद जी घूमते फिरते ब्रज में आ गए और ब्रज में आकर के ये प्रस्ताव गोपियों के सामने पेश किया, तो गोपियां बड़ी खुश हुई, बोले भगवान के अंगुली के चोट लग गई और भगत के खून से भी आराम हो सकता है, तो नार तेरे पास क्या है? इसको बर्तन है? बोले कमंडलू है। तो बोले तुम दो कमंडलू को लेकर के, और गोपियां अपने जान चिर चिर के उसको भरने लगी। कमंडलू को भर दिया खून से। बोला नार हमारी ऐसी भक्ति तो नहीं है, किंतु हमारा खून यदि भगवान के काम आ जावे तो हमारा जीवन सफल। नार जी लेकर के वहां आए। नार इतना खून क्यों लाया? बोलो महाराज बस बार बार पति भिजो भिजो करके बांधते रहो। बोले ये खून तुम्हारे को कहां मिला, कैसे मिला? बोले महाराज मैं बहुत भटक्या किंतु कहीं ऐसा मुझको नहीं मिला, ये खून गोपियों के पास मिला। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में हंसते हंसते अपनी जगह काट काट करके खून देना शुरू किया। हमारा कमंडल भर गया और हम कितना लावे। तो भगवान ने कहा कि नार अब तुम्हारे समझ में आया सबसे बढ़ करके हमारी भक्ति किसमें है? हाँ बोला प्रभु समझ में आया। जब आपने कहा था कि सबसे बढ़कर गोपियां मेरी भक्त है तब तो हमारे समझ में नहीं आया था, और मैं भक्त का खून लाने के वास्ते यहां से निकल गया, किंतु जब जहां गया वहां ही मुझको सूखा जवाब मिला, किसी ने भी नहीं दिया। बोलो नार तू भटकता क्यों फिरा? क्या तू मेरा भक्त नहीं है? तुमको ये बात नहीं सूझी कि मैं भटकूं क्यों? इनके उंगली के चोट लगी है तो अभी जान काट करके अपना खून में दे दूं, जैसे गोपियों ने दे दिया तुम भी तो दे सकता था। हाँ महाराज ये बात मेरे उस वक्त में हृदय में आई नहीं। बोले गोपियों के कैसे आई? हाँ महाराज अब हमारे समझ में आ गई कि मैं तो झूठा ही भक्ति का अभिमान रखता हूं, आपकी भक्त तो गोपियां हैं। एक समय की बात है भगवान श्री कृष्ण जी अपने रनवास के मां रुक्मिणी आदि के सम्मुख के बीच के मां जब प्रेम का विषय चलता तो कौन सी पटरानी का कैसा प्रेम है इस प्रकार का विषय चलता तो भगवान कहते हाँ सबका ही प्रेम। तो भगवान से पूछा करती रानियां कि सबसे ज्यादा प्रेम किसका है? बोलो सबसे ज्यादा प्रेम तो राधा जी का, तो कभी हमको भी उनका दर्शन कराओ। बोलो ठीक है कभी हो सकता है। दो चार दिन के बाद ऐसा मौका मिल गया कि वहां राधा जी जो है सहेलियों के सहित आ गए। आ गए तो रानियों ने उनकी बड़ी खातिरी की, बड़ा सत्कार किया, आदर किया, पीने के लिए बढ़िया दूध सो पिलाया। राधा जी भी एक प्रकार से उनके साथ में बहुत अच्छा प्रेम का व्यवहार किया, दोनों का परस्पर में बड़ा प्रेम का व्यवहार रहा, और फिर राधा जी अपने स्थान पर चले गए। रात्रि के बीच के वहां भगवान शयन करने के आए रुक्मिणी के महल में, और रुक्मिणी जी जब पग चंपी करने लगे तो भगवान के चरणों के फलोड़े देखे। बोले महाराज ये फलोड़े कैसे हो गए? बोला ये तो ऐसे ही हो, नहीं यदि आपको ज्ञात हो तो बतलाओ। बोले रुक्मिणी जी ऐसे ही हो गए, इसके आवाज से आप क्या पूछते हो? हो गए। बोले नहीं महाराज मैं जानना चाहती हूं कि यहां राधा जी आई थी। हाँ बोले महाराज आज दिन में राधा जी पधारे, उनकी तुम लोगों ने खातरी की, महाराज ये किन चीजों को बना किया। क्या उनको दूध पिलाया था? हाँ महाराज, दूध पिलाया था। उसके वहां समझो कि पिस्ता वगैरह सुगंधित द्रव मिला करके और बहुत ही आपने दूध पिलाया गर्म गर्म। बोले बस वही कारण। बोले महाराज दूध पिलाना कारण होगा? बोला दूध किछ गर्म अधिक था, तो गर्म अधिक था उससे आपके चरणों के फुलड़ा कैसे हुआ? कि मेरे चरण जो है सो राधा जी के हृदय में नित वास करते और उनके चरण हमारे हृदय में वास करते, तो वो गर्म दूध मेरे चरणों पर जाकर के पड़ा और फलोड़ा हो। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, महाराज हम ऐसा नहीं जानती थी, ये हमारी बड़ी गलती होगी, अपराध हो गया। राधा जी का इतना प्रेम है कि आपके चरणों को अपने हृदय में रखती है। हाँ बोले हृदय में हर वक्त रखती। एक दिन की बात है, और भगवान की गुण और प्रभाव की बातें करने लगी और प्रेम की बातें करने लगी कि भगवान का किस सखी के साथ में कैसा प्रेम है। तो सबने वही निर्णय किया कि सबसे अधिक प्रेम राधा जी का, एक सखी को फाटक पर बैठा दिया दिल को कि किसी को मत आना, भगवान भी आप इसके विरोध। भीतर में राधा रानी बैठी है और भी सब सखियां बैठी है, आपसी के बीच में प्यार रोग लग गया कि मैं चाहती हूं इसको बुलाना तो भी नहीं बुला सकती, मेरे पे तो ऐसा जादू कर दिया। और मैं रात दिन इस प्रकार से आप पागल से दुनिया करती कि ये मेरा पागल पुरा दूर कैसे है, इसकी मैं दोस्तों को दुआई नहीं दी, भगवान के मिलने की ओर को दूसरी दुआई दी, कितने काले हुए। उसके उत्तर में एक शक्ति कहती है कि हम लोग आंखों में जो काजल घालते हैं ना, और वो हमारी आंखों में बसता है, तो हमारी आंखों के काजल से भी वो काला हो। इस प्रकार से थी तो विरोध किया करती थी। एक सखी ने कहा कि सखी मैं उसको कभी बुला नहीं सकती हूँ, तो रात और दिन में मेरे हृदय में बसता है, क्या ऐसा नहीं हो जाए कि मैं श्री कृष्ण को याद करती करती कृष्ण में बन जाऊं, तो दूसरी सुखी बोली बन जाते इसमें क्या हानि है, तू रात दिन कृष्ण को याद करती है और श्री कृष्ण रात दिन तुमको याद करती है, उनके नियम है कि ये सामान प्रपदन के काम सके बजाम हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हूँ तो मैं वैसे ही भजता हूँ,
तो वैसे ही भजता हूँ, तो तुम जब कृष्ण बन जाएगी तो वो गोपी बन जाएगी, तो तुम्हारा दाम्पत्य प्रेम तो कायम रहेगा, तो इसके वास्ते तुम्हारे को चिंता नहीं करनी। इस प्रकार से कोई कुछ और कोई कुछ सखियां बात कर रही है। इतने में वहां दुर्जय के ऊपर फाटक के ऊपर भगवान आ गए, सखी ने रोक दिया कि भीतर जाने का हुक्म नहीं है राधा रानी, तो हुक्म ले लो कि श्री कृष्ण आए हैं, पर आप यहां ठहरिए मैं पूछ कर आता हूं। भगवान वहां दुर्जय पर ठहर गए और वो पूछने गई तो सखियों ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी तो हमारे रहस्य की बात हो रही है और वो आ जाएगा तो सब बात बंद हो जाएगी, कह दो अभी थोड़ी बात ठहर। वो गोपी आकर के विनय से कहने लगी कि अभी प्रेम का जो तत्व है और है वो जो चीज समझ जाती है या कोई पुरुष समझ जाता है, वहां भय और संकोच, आदर और सत्कार वहां से विदा हो जाता है। जब साधक सारे भावों से उठ जाता है, सारे भावों से ऊपर को उठ जाता है, वहां फिर ये सब नहीं होते। सारे भाव क्या, जैसे माधुर्य भाव है, दास भाव है, सख्य भाव है, और वात्सल्य भाव है, शांत भाव है। माधुर्य भाव के भी दो भेद होते हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। अपनी जो धर्मपत्नी है उसका जो माधुर्य प्रेम है वो स्वकीय है, और जो असली दूसरे की है, और वहां जो माधुर्य प्रेम है वो परकीय भाव। उसमें फर्क क्या है? तो फर्क यह है, अपनी असली के हृदय में काम दीपन हो जावे या पुरुष के हृदय में काम दीपन हो जावे तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी है, उसके साथ में सहवास करने में भी दोष नहीं है। किंतु स्त्री दूसरे की है और उसके बीच के मां मधुर प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, वहां विशुद्ध प्रेम के मां यदि काम वासना हो जावे तो उसको काम वासना उसमें कलंक है। सेवा की तो बात ही दूर रही, वहां काम तो जहां प्रेम होता है वहां एक प्रकार से ये कोई भी दोष वहां नहीं रहता। तो उन सब का विशुद्ध प्रेम था। फिर कभी एक प्रकार से संकोच या भय, ये आदर ये सत्कार आ जाता तो एक प्रकार से समझो कि जैसे वात्सल्य भाव है, जैसे सख्य भाव है, दास भाव है, कोई सखी है तो दासी थी और अपना दास भाव रखती थी तो उसके मन के मां अपने स्वामी का भय भी हो जाता, संकोच भी होता। इसी प्रकार से थी सख्य भाव किसी का रहता है तो उसके बीच के मां कुछ कुछ लज्जा रहती, और सब भाव से जब ऊपर उठ जाता है तो ये दोष वहां नहीं आ पाता। एक साथ भी कई भाव रहते हैं और सब भावों से ऊपर उड़ जाता है तो उससे ये सारे भाव अंतर्गत होते हुए भी उन भावों के कारण से जो किसी कमी समझी जाती है वो आगे जाकर के मिल जाती है। दास भाव जो है वो ऊंचा भाव है, इसी प्रकार से सख्य भाव भी ऊंचा भाव है। हनुमान जी का जो श्री रामचंद्र जी में जो भाव था वो दास भाव था, और अर्जुन का जो श्री कृष्ण जी में जो भाव था वो दास भाव भी था और सख्य भाव भी था। भगवान ने खुद कहा है कि भक्तों से मैं सखा से थी, तू मेरा भक्त और सखा है। अर्जुन ने भी कहा है मैं सखा ऐसे मान करके आपके साथ के मां जो व्यवहार किया है आसन पर, सज्जा पर, और पर जो आपके साथ के बीच के मां किसी तिरस्कार कर दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। तो ये भी एक प्रकार से थी अर्जुन के लिए उच्च भाव नहीं है। उद्धव का जो भाव है ये भी दास भाव भी था, सख्य भाव भी था, और जितने जो गोप ग्वाल थे उन सब का सख्य भाव था, और गोपियां जो है इनका ये सखियां थी इनका सख्य भाव भी था, और बहुत उनका माधुर्य प्रेम था, और श्री राधिका जी सब भाव से उठी हुई थी, सारे भाव उसके समावेश थे, और वो खुद जो है
सो भावों से अतीत थी, तो प्रकार से हम लोगों को भी भगवान के साथ के बीच में उनका जो भाव था गोपियों का, उस भाव के अनुसार भगवान के मां प्रेम करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि सखियों का जो प्रेम है वो स्त्रियों का ही हो सकता है, पुरुषों का नहीं। वो तो भाव है, भाव तो सबका ही हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। पुरुष जो है सखा होकर के रहता है, स्त्री सखी होकर रहती है। पुरुष है तो दास होकर के रहता है, तो स्त्री दासी होकर के रहती। पुरुष जो है सो पिता होकर के रहता है, तो स्त्री माता होकर रहती है। माता का भी वात्सल भाव है, पिता का भी वात्सल भाव, शांत भाव उसको कहते हैं। जो साधन के समय के मां द्वेष भाव है, और फल जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के मां उसका प्रिया यानी समाप्ति मानी जावे। साधन काल के बीच के मां तो द्वेष, और फल के मां सच्चिदानंद परमात्मा की अद्वेष की प्राप्ति। निर्गुण निराकार ब्रह्म के बीच के मां जो भाव है वो शांत भाव है, और सगुण की भक्ति करते हुए भी जो